यकीन करें आज का सबक बड़ा बोझिला, पूरा वीकेंड मेरे दिल पे बोझ था। मुझे पूरा वक्त ऐसे फील हो रहा था कि जैसे ऑपरेशन होना हो ना किसी का, तो उससे एक दो दिन पहले की बात है, क्योंकि ये आयतें पढ़ानी आसान नहीं है। आप पता नहीं क्या सोचते होंगे, बस आके बैठ के तो ये बोलना शुरू हो जाते हैं। बोला ही नहीं, इसके अंदर दिल की एक एक धड़कन होती है इंसान की, खून का एक एक कतरा जमा होता है उंगलियों तक में, इस बोलने और पढ़ने पढ़ाने का असर महसूस होता है, फिर ये चार लफ्ज मुंह से निकलते हैं। ये बात आसान नहीं, ये वाकई अल्लाह ताला कहते हैं इन्ना अले इन्ना सनुल की अलेकन कौलन सकीला, ए नबी हम आप पे बड़ी बोझल बात डालने वाले। ये रास्ता आसान नहीं है, इसके लिए किरदार फिर वो बनाने पड़ते हैं कि जो पहाड़ों की तरह मजबूत हो। तो यहाँ एक कमजोर किरदार, लूज करेक्टर शख्स का किस्सा आ रहा है। पढ़ते हुए अल्लाह वाला तजल्ला मिन्हुम, हम सब पढ़ें, क्योंकि किसी न किसी तरह से हम सब ने भी इल्म का और आयतों का रास्ता चुना हुआ है। 175 से 177 तक का ये वाक्या चलेगा, इसको एक स्ट्रेच में पढ़ेंगे, फिर इसमें से अपने लिए अमल की बातें। वत्लु अलैहिम नबअ अल्लज़ी आतैनाहु आयातिना, और सुनाइए उन्हें खबर उस शख्स की जिसको हमने अपनी आयतें अता की थी। नबा खबर के लिए आया, अहम खबर के लिए आता है। इससे पता चलता है कि ये तमसील नहीं है, वाकया है। ये कौन शख्स था, इसके बारे में दो तीन नाम आते हैं। बलम बिन बाउर, बनी इसराइल का शख्स है। बलम कुछ भी लिख ले, ना भी लिखे, लेकिन वैसे तो ये किरदार है, लेकिन हकीकत है, कहते हैं कि ये हकीकी किरदार है। फिर इसी तरह इसके साथ एक और नाम भी आता है। रिवायात जब आप पढ़ेंगे कभी, तो फिर आपको ये सारे नाम याद भी हो जाएंगे। इस वक्त आप इन नामों को ना भी याद रखें तो कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन ये वो शख्स था कि जिसको अल्लाह ताला ने अपने लिए, अपने दीन के लिए, अपनी किताब के लिए चुना था अपने दौर में, जब भी था ये दौर उसका। फिर इसी तरह से इसके साथ एक नाम आता है उमैया बिन सल्त, स्वाद से उमैया बिन सल्त या कोई और भी था। क्या हुआ इसके साथ, अल्लाह ताला ने इसको किताब का इल्म दिया, आयतें दी, अपने इल्म के लिए चुना, लेकिन फनसलहा मिन्हा, तो वो तो इनसे निकल भागा, यानी उसने किताब का फंदा अपनी गर्दन से उतार फेंका। इन सलाह का लफ्ज सीन लाम खा, उर्दू में लफ्ज सुना, मैं सुलाख, ये वही लफ्ज है, खाल उतारना, खास तौर पर सांप का खाल बदलना। आपको ये मालूम होगा कि कुछ सांप जो होते हैं ना, वो खाल बदल लेते हैं ना, किन बदलते हैं, औरत के कुर्ता उतारने के लिए भी ये लफ्ज अरबी में आता है। यानी इल्म का एक जाहरी लुबादा था बस अभी उसके ऊपर, अभी इल्म का एक छिलका ही आया था ऊपर सिर्फ, जैसे जख्म के ऊपर छिलका आता है तो हम समझते हैं कि जख्म भर गया, छीलते हैं तो खून निकल आता है, ये वो कैफियत होती है। अभी इल्म पूरा अंदर नहीं आया था, अभी राह से खून फिर इल्म नहीं हुआ। फनसलह मिन्हा, वो इस इल्म के तकाजे नहीं पूरे कर सका, इसकी कुर्बानियां नहीं बर्दाश्त कर सका, जो पाबंदी लगती है नफ्स पे वो नहीं लगा सका। अब आप इमेजिन करें ना, एक शख्स ने ऊपर एक खाल पहनी हुई थी, फनसलह मिन्हा उतार दिया, जू ही इल्म की खाल उतरी, फतवाहु शैतान, तो शैतान उसके पीछे लग गया, क्योंकि ये इल्म एक ढाल है, इल्म एक बैरियर है मेरे और मेरे शैतान के बीच में। क्यों अल्लाह के नबी ने कहा कि ऐसे लोगों के बीच में रहा करो कि जो सुबह शाम रब को पुकारते हैं, क्योंकि बंदे को रब याद रहता है। अल्लाह के नबी के सहाबा अल्लाह के नबी से क्यों नहीं थे उठते, क्यों आपकी महफिलों से दूर नहीं होते थे? हजरत अबू हुरैरा क्यों नहीं जाते थे कमाने खाने के लिए? कहते थे इल्म की महफिल से हटे तो कहीं फतवाहु शैतान, जैसे ये चार घंटे की कैफियत है और बाद में वाजफा वीकेंड्स की एक्टिविटीज, फर्क होती है ना कैफियत। फिर दोबारा खाल जल जाती है चार दिन में, तो फिर कुछ ना कुछ क्रीन आता है, ये हम सबके साथ होता है। पांच दिन चार दिन हम सब इस इल्म की छाव में आ जाते हैं, शैतान हमसे मायूस हो जाता है, फिर बीच में दो तीन दिन छुट्टी के आते हैं। अगर बीच में आप खुद पढ़ते हैं सीखते हैं तो इनशाला 7 days 24/7 की आपकी ये खाल है, अल्लाह की तौफीक से और बहुत सारों की माशाल्लाह। लेकिन जहां इल्म का खरीड उतरा, फतबा शैतान, जहन में आ रहा है कुछ, जख्म सोचे, जहां जख्म उतरा होता है ना, वहां हल्का सा टेंचर भी लगाए ना तो चीखें निकल जाती हैं, वही कह भी आता है। अब क्या हुआ, शैतान उसके पीछे लग गया। शैतान का हमला क्या था पीछे, आपने पढ़ा, आगे से पीछे से आऊंगा, सूरह हिजर में आप पढ़ेंगे इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तानन इल्ला मन इत्तबअका मिनल गावीन। सूरह हिजर की आयत है कि शैतान को किसी बंदे पर इख्तियार हासिल ही नहीं होता, लेकिन जब बंदा अल्लाह की नाफरमानी की तरफ लपकता है और बुराई कर बैठता है तो शैतान का शिकार बन जाता है। क्या पता चला? आप इमेजिनेशन में लाए कि एक बंदा कहीं जा रहा है और शैतान उसके पीछे है। कोई बला सोच लें, कोई काला कुत्ता सोच लें, पीछे पीछे लगा हुआ है। वो देखना ये चाहता है कि किस वक्त ये गाफिल और मैं इसको पकड़ लूं। लिहाजा जू ही वो इल्म से पीछे हटा, शैतान का हमला हुआ, फकान मिनल गावीन, तो वो गुमराहों में हो गया। अल्लाह ताला कहते हैं ये सबर ना कर सका। अब क्या हुआ? आयत 176, वलौ शिना लरफअनाहु बिहा, और अगर हम चाहते तो इन आयात के जरिए से ही इसको बुलंदी देते। यानी जिस दुनिया की शोहरत, इज्जत, पंप, शो, ग्लैमर, लोगों की तारीफें, बातें, अच्छा गेटअप, माहौल, पार्टी, फन फ्लैक्स, लोगों की वाह वाह सुनने के लिए उसने ये सब छोड़ा, तो ये तो इसको कुछ सालों की मेहनत के बाद इल्म की शान और बरकत में मिल जाता। क्या पता चल रहा है कि बहुत सारे लोग इल्म का ये जो मुश्किल रास्ता है ना, जल्दबाजी में छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको तारीफ अच्छी लगती है। फितरत है और कोई बुरी बात नहीं है। अल्लाह ने इंसान की तबीयत में रखा है कि लोग उसकी तारीफ करें। बच्चा भी खुश होता है अपनी तारीफ सुन के। लेकिन इल्म के जो इब्तदाई दिन होते हैं ना, ये तो मट्टी होने के होते हैं। वो कहते हैं ना कि गुलो गुलजार होने के लिए मट्टी होना पड़ता है। बस उन दिनों की जो जिल्लत है ना, जिल्लत उर्दू वाली नहीं, अरबी वाली, इसको नहीं बर्दाश्त कर पड़ता नापरस्त। ये नापरस्त शख्स है। वो कहते हैं मैं तो लेट डाउन हो गया, मेरी कोई जिंदगी है, ये क्या हो गया? पिछले 6 महीने में इतनी बातें कुरान ने मुझे सुना दी जो मैंने आज तक अपनी माँ से नहीं सुनी थी। मैंने तो सास की नहीं आज तक सुनी, ये कुरान हर थोड़े दिन बाद एक आयत मेरे सर पे मारता। ऐसी है ना कुरान की आयतें है ना। होता कि एक ऐसा बंदा फिर दुनिया की तरफ भागता है तो अल्लाह उसके हाल पे अफसोस करते हैं, कितना चंद दिन और सबर कर लेता, वलौ शिना लरफअनाहु, इसी किताब से इज्जत मिलती थी। लेकिन सबर क्यों नहीं कर सका? वलाकिन्नहु अखलदा इलल अर्दी, लेकिन वो तो जमीन ही की तरफ धंसता चला गया। ये जो अखलदा इलल अर्द है ना, मटीरियलिज्म की तरफ लिख रहे, मादा परस्त हो गया, खुल्द से किसी चीज की तरफ इत्मीनान से झुक जाना। जन्नत के लिए जो लफ्ज आते ना खालिदून, वो भी यही है। यानी इसको दुनिया का मजा कम होता हुआ दिखा, ये चाहता था, ये डिस्ट्रैक्ट हो गया हूं इस आयतों में जुड़ के। दुनिया है लेकिन दिल दुनिया में नहीं रहा, तो ये तो मतलब हो कि मेरी दुनिया खत्म हो गई। आई वॉन्ट टू एंजॉय माई दुनिया, तो अखलदा इलल अर्द, और ये ऐसा झुका कि जमीन में धंसता गया। अल्लाह की आयतें इसको ऊपर उठा रही थी, इसकी रूह को सुकून दे रही थी, इसका मुकाम ऊपर भी बढ़ रहा था और दुनिया में भी बढ़ना था, लेकिन ये जमीन की तरफ आया। वही बात याद कर लें जो रूह की तज़किया नफ्स लेक्चर में भी आपने सुना होगा कि हमारा जिस्म दो चीजों के बीच में, रूह ऊपर उड़ा रही है और जिस्म नीचे जा रहा है। अब रूह के तकाजे कट गए, कुरान की डोरी कटी तो रूह के तकाजे कटे, तो जमीन के साथ नीचे घिसा। हमारा जिस्म इस मिट्टी के ऐसा बना, इसी में झुकता है। सूरह तौहा की आयत 55 में हम पढ़ेंगे, मिनह खलकना को, हमने इसी जमीन जमीन से तुमको पैदा किया और तुम इसी में जाना चाहते हो। हमारी रूहें अलस्तु बिरब्बिकुम कहत करके आई है, इसलिए हमें ऊपर उठाती हैं, बतन और फरज के तकाजों से ऊपर उठाती है। बतन किसको कहते हैं? टमी को, और फरज कहते हैं प्राइवेट पार्ट को। हमारा जिस्म चाहता है कि हम हर वक्त पेट पूजा करें। जान के बोला है, लव सही नहीं है इसीलिए बोलता है कि लोग ये चाहते हैं कि पेट को पूजते रहे। रूह चाहती है अल्लाह को पूजो, पेट चाहता है कि तुम खाते रहो, और फर्ज चाहती है कि बस तुम सेक्स और ब्यूटी और ग्लैमर और कंधे उछाल उछाल के दूसरे गलत कामों पे लोगों का साथ दो। रूह नहीं मानती, ये लड़ाई होती है, चपलश है ना। आप सोचे ना, एक चीज ऊपर जा रही है, एक नीचे जा रही है। अब जब मैं और आप कुरान पढ़े ना, खासतौर पर आप में से जो लोग आजकल फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, उनकी बिल्कुल यही कैफियत है। कुरान की हर आयत आपको ऊपर उठाती है, कहते हैं ना निगाह बुलंद, ऊपर निगाहें लगी हुई है, ठीक है, लेकिन पहले से दुनिया तो जमीन पे थी। तो ये जो ये रस्सा कशी ना, ये है हमारा आजकल का दौर कुरान पढ़ने का। इसमें जो बंदा सबर शुक्र से बैठ जाए, थोड़ा ऊपर नहीं पूरा उड़ रहा ना, थोड़ा सा ऊपर है, तो कम अज कम नीचे जाने से बच जाएगा। लेकिन जो ऊपर से कटा, जहन में कोई भी इमेजिनेशन में ले आए चीज, तो फिर अखलदा इलल अर्द, जमीन में चला गया। और जब आज भी देखिए कशिश सिकल है ना, ग्रेविटी जिसको बोलते हैं, ये जो आज मेरा और आपका जिस्म का वजन है ना, जो हम कहते हैं हमारा वेट है इतने पाउंड इतने, ये इस कशिश शिकल की वजह से है। अगर आपको अपना वेट लूज रखने का शौक है, चांद पे चले जाएं, चांद पे जाके आपका जीरो वजन होगा। ये कशिश शिकल की वजह से हमारा वजन है, ये ग्रेविटी हमें लेती है, हम इसको रिजिस्ट करते हैं। जिस तरह जाहरी तौर पे ये जमीन की कशिश शिकल है ना हमारे जिस्म पे, इसी तरह इस मादा जिंदगी की कशिश हम सबको इस दुनिया में खींच रही है। बाबर बैश कोश के जहां दोबारा नीस, ये बड़ा अच्छा लगता है लोगों को, कहते हैं क्या खूबसूरत दिन थे, कैसे बैठते थे, खाते थे, पीते, ये क्या हो गया। मुझे तो लगता है मैं दुनिया से कटती जा रही हूँ, मेरे साथ तो पता नहीं क्या हो रहा है। ये कश्मकश वो बर्दाश्त नहीं कर सका और कट के उसने अपने आप को दूर किया। वाह हुआ, अब क्या होगा, ट्रैप्स को एरो में लगा रहे। सबसे पहले उसने क्या किया, इंसलखा, उसने आयतों का पत्ता काटा, फतवा शैतान पीछे लग गया, तो ये दूसरा स्टेप, फकान अमिनल गाविन तीसरा स्टेप, और चौथा वत तबा हवा हो, फिर ख्वाहिशों की पैरवी करने लगा। ये है इंसान के ख्वाहिश परस्त होने के चार रास्ते। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। नबी सल्लम की एक हदीस का खुलासा है कि मेरी उम्मत को ख्वाहिशें ऐसे डसेंगी जैसे बावला कुत्ता किसी को काटे तो जहर उसकी रग रग में चला जाता है। कभी ख्वाहिशें देखनी हो ना तो फिर अपनी हम रहन सहन और खुशियों गमों को देखा करें, ये ख्वाहिशें नहीं जीने देती वल्लाही, और कोई शौक हमें भी कोई नहीं होता। शैतान ख्वाहिश के रास्ते आदम को जन्नत से निकालता है और आज आदम के बच्चों को ख्वाहिश के रास्ते उस जन्नत से रोकता है। अब अगला स्टेप देखिएगा, फमसलहु कमसलिल कल्ब, इसकी तो मिसाल कुत्ते की सी हो गई। इन तहमिल अलैही यलहस, बोझ रखो, यानी अगर तुम इस पर बोझ रखो तब भी हांफने लगेगा। औ तत्रुकु यलहस, या इसको छोड़ दो तब भी हांफता रहेगा। ज़ालिका मसलुल कौमिल लज़ीना कज़्ज़बु बिआयातिना, यही मिसाल है उस कौम की जिन्होंने हमारी आयतों को झुठला दिया। फ़क़्सुसिल क़सस, बस इन पर ये किस्से बयान कीजिए। लअल्लहुम यतफक्करून, ताकि वो गौर व फिक्र करें। अल्लाह सुब्हान तआला ने इन आयतों में एक बड़ा बोझल सा किरदार रख लिया हम सबके सामने। इंसान ख्वाहिश परस्त कैसे बनता है, इसके ये चार मरहले थे। सबसे पहला मरहला क्या बना, दोबारा जरा इसके ऊपर थोड़ा सा गौर कर लेते हैं कि अल्लाह ताला लोगों को इल्म देता है किताब का। एंड किताब जो है ना, एक बात लिख लें बस, आप इस कोर्स के नाते से जो कुछ सीख रहे हैं ना, उसका एक लफ्ज में जवाब है, सेल्फ कंट्रोल। वमन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फाइनल जन्नत ही अल मावा, बस जो रब के सामने खड़ा होने से डर गया और उसने अपने नफ्स को ख्वाहिश से रोक लिया तो उसकी जन्नत है। हमारे और हमारी जन्नत के बीच में जो रुकावट है ना, वो पता क्या, हवा, हमारी ख्वाहिश। कुरान और ये आयतें बंदे की ख्वाहिशों पे पाबंदी लगाती हैं। ये कुरान बस एक काम करता है आपके ऊपर, आप खुद फील करेंगे दिन ब दिन आपकी दुनिया की ख्वाहिशें बदल के आखिरत में बदलती जाएंगी, चेंज हो जाएंगे चॉइसेस, और नतीजा क्या होगा कि अल्लाह ताला आपको बदल देगा। जब इसको उतारा, इसकी जाहरी चीजें जो उसको नहीं पसंद आ रही थी उसको अलग किया, उतर गया, हटा दिया। अब ये जो इंसलखा होता है ना, अल्लाह रहम करे ये कैसे होता है इंसलाख, ये बहुत बड़ी सजा है। इस इंसलाख के कुछ मरहले होते हैं, वो भी लिख लें, मुश्किल बात लग रही है लेकिन सुनेंगे तो बहुत आसान लगेगी। यानी आप इसको यूं समझ लें कि मुझे कैसे पता चले कि मैंने इन आयतों का फंदा उतार के फेंक दिया, क्या मतलब है, कुरान का इनकार या कल तौरात का इनकार किया उसने, क्या मतलब है, पाबंदियों से आजादी। ये बड़ा बड़ा लिख लें, इन सिलाह का ये हरगिज मतलब नहीं कि ऐसा शख्स कुरान का मुनकिर है, किताब का मुनकिर है, या नौज बिल्ला वो कुरान को मानता नहीं है या पढ़ता नहीं। बस एक लफ्ज लिख लें, पाबंदियां बर्दाश्त नहीं करनी उसने। वो कहता है नंबर एक, कौन कहता है मैं आयतें छोड़ रहा हूं, आपको मैं चंद स्टेप्स लिखाती हूँ, आप इसको फिर बाद में जैसे रीसेट करना चाहे आपकी मर्जी ये कर सकते हैं। सबसे पहले जब बंदे का ये इंसिलाख शुरू होता है ना, तो उससे पहले उसकी जिंदगी का कोई दुराहा चल रहा होता है। سبیل الغی اور سبیل الرشد کا انٹرسیکشن ہوتا ہے. یاد آ گئی وہ تصویر؟ نمبر ون اسٹیپ انسلاب کا. حالات میں کوئی غیر معمولی تبدیلی آتی ہے اس انسلاخ سے پہلے. روٹین لائف میں یہ انسلاخ ممکن ہی نہیں. شیطان تو دور بھاگ جاتا ہے ایسے بندے سے جو آیتوں سے جڑتا ہے. ٹھیک ہے, فرسٹ اسٹیپ یہ ہوتا ہے. کوئی درخ آتا ہے کسی بھی قسم کا, روٹین تھوڑی سی ٹوٹتی ہے. پھر اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ کیا ہوتا ہے کہ انسان مس انڈرسٹوڈ کرتا ہے. سوچتا کیا ہے کہ میں سبیل و رشد میں ہوں, لیکن اصل میں وہ غیب پہ چڑھ چکا ہوتا ہے. کچھ روٹین بدلتی ہے. جیسے آپ دیکھیں نا, ہم سفر کرتے ہیں تو ہماری روٹین بدل جاتی ہے نا, سونے جاگنے کی, کھانے پینے کی, لباس کی, موسم بدلتا ہے. اس طرح جب سبیل و رشد اور غیب کا انٹرسیکشن ہوتا ہے نا, تو بندے کی تبدیلیاں آتی ہیں کچھ زندگی میں جس کو سمجھ نہیں پاتا. پھر اگلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ یہ انسلاخ شروع ہوتا ہے نا اس کی زندگی میں, تو وہ کہتا ہے کون کہتا ہے میں آیتیں چھوڑ رہا ہوں. پھر ایک اور اگلا مرحلہ ہوتا ہے, کہتا ہے میں صرف راستہ چینج کر رہا ہوں. یعنی مین میں اس روڈ سے لاہور نہیں پہنچوں گا, میں اس روڈ سے لاہور پہنچ جاؤں گا. جہاں میں جنت میں رہوں صرف میں نے راستہ چینج کیا. پھر اگلی بات, آئی ایم ایٹ مائی اون, میں اپنی روٹین خود بناؤں گا, میں خود کروں گا, میں خود ڈرائیونگ کروں گا. مجھے اس ٹرین چلانے والے کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں ہے کیونکہ اس میں اتنے ڈبے ساتھ لگتے ہیں, میں تو اس سے بھی تیز بھاگ سکتا ہوں, یا میں بہت سلو چلتا ہوں لیکن یہ بہت تیز ٹرین چلتی ہے. یہ مثال ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ایک اور اس کی نشانی نوٹ کر لیجیے, اور وہ کیا ہوتی ہے کہ جب یہ انسلاخ شروع ہوتا ہے نا, تو بندہ ان آیتوں سے نہیں پوچھتا کہ میں کیا کروں, یعنی قرآن سے نہیں پوچھتا کہ مجھے کیا کرنا ہے, اور نہ آیتوں والے ساتھیوں سے پوچھتا. پوچھتا ہی نہیں, خوف آتا ہے دل میں, مشورہ نہیں کرتا. اور اگر آپ اس کو خدا نہ خواستہ کسی کو صرف بات سمجھ آ جائے کہ اگر اس کو آپ اپنے اوپر لے لیں, اللہ نہ کرے کہ آپ اس کورس کو لے لیں, میں نہیں کہتی کہ ایسا ہو, لیکن اگر لے لیں, کیونکہ یہ بھی تو قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں نا, اللہ نہ کرے کبھی آپ کورس چھوڑنا چاہیں, تو وہ بھی انسلاخ کی ایک قسم ہے نا, تو آپ کبھی اپنے استاد سے نہیں مشورہ کرتے. میں اکثر سوچتی ہوں, ابھی تو الحمدللہ سب چل رہے نارمل, لیکن کئی سال کا سفر ہے, بیچ میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے, لوگ 19ویں پارے پہ ایک دفعہ ایک اسٹوڈنٹ چھٹ گئی, کچھ کچھ ایسے ہوا. تو میں اکثر جب ساتھیوں کے سامنے رپورٹس آتی ہیں, جب ظاہر ہے ہمارے سامنے سارے فگرز کھلتے ہیں, ہمیں پتہ چل جاتا ہے کون کب سے آتا ہے کون نہیں آتا, تو میں اکثر پوچھتی ہوں اپنے ساتھیوں سے, کبھی کسی اسٹوڈنٹ نے مجھ سے کیوں نہیں مشورہ کیا کورس چھوڑنے سے پہلے, خود ہی کیوں بیٹھ جاتے ہیں گھر میں, اس کا مطلب سم تھنگ از رانگ. آپ دیکھیے نا کہ ماں سے زیادہ کون آپ کی مدد کرے گا. آپ کا بچہ آپ کے ساتھ کوئی مشورہ کرے تو کیا آپ اس کو مارتے ہیں؟ آپ کا بچہ کہتا ہے امی میں ڈاکٹر نہیں بن سکتا, میں نہیں میڈیکل کر سکتی, امی پلیز رحم کریں میرے اوپر, تو کیا آپ اپنے بچی کو ماریں گے؟ آپ اس کو آلٹرنیٹ دے دیں گے. بچہ آپ کا آپ حفظ میں ڈالتی ہیں, مار پیٹ کے اس کو پڑھانا چاہتی ہیں, وہ نہیں پڑھ پاتا, اگر ایک دن روتا ہے امی پلیز میرے ساتھ رحم کریں میں نہیں کر سکتا, تو کیا آپ ماریں گی؟ تو کیا ایک استاد تک نہ پہنچنا کیا اس میں کچھ گڑبڑ نہیں ہے؟ میرے ساتھ آج تک پچھلے الحمدللہ جتنے بھی سال ہیں اللہ کی توفیق سے, مجھے آج تک 3-4 اسٹوڈنٹ ایسے یاد ہیں ماشاء اللہ, اللہ ان کو آخری دم تک زندگی کے ہدایت پہ رکھے, کہ جب تھڑکنے لگے نا تو سیدھا میرے پاس آ گئے. اور میں کہتی ہوں میرے گھر رات میں آئے, میرے گھر دن میں آئے, میں کبھی ہر وقت فون نہیں اٹھاتی, لیکن جب مرضی فون کر کے مجھے کہہ دے کہ پلیز ہمیں مشورہ دے دیں کہ ہم یہ انسلاخ کا طریقہ سوچ رہے ہیں, آپ ہمیں گائڈ کریں. مجھے چل کے آنا پڑا نا, میں آپ کے چل کے آ جاؤں گی, مجھے آپ کو بلانا پڑا, میں آدھی رات کو بھی اپنے گھر بلا لوں گی, میں ایک سیکنڈ ضائع نہیں کروں گی, لیکن آ کے مجھے بتاؤ. تو ایسے وقت میں اس طرح سے انسان تھوڑا سا اریٹیٹنگ فیل کرتا ہے, جیسے وہ ماں باپ پہ غصہ آنے لگتا ہے نا, کیوں ڈالا ہمیں اس مشکل میں, یہ کیفیت ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اس کے بعد انسان ان لوگوں سے مشورہ کرتا ہے جو خود بھی اس چیز سے دور ہوتے ہیں, یہ ایک اور تباہی پہ تباہی ہوتی ہے. آپ سب کو آج پھر بتا دوں, ویسے میں پہلے سوچ رہی تھی کئی دن سے, جب کئی چیزیں ایسی ایسی نظر میں آتی تو کہ کچھ 2-3 مہینے بعد آپ سب کو وہ پریزنٹیشن دکھا دینا چاہیے دوبارہ جو آپ کو ڈے ون میں دکھایا تھا, لیکن آپ کو یاد نہیں ہوگا پورے, جس میں سارے رولز اینڈ ریگولیشن. سب سے کٹھن رول ہے نا جو ہمارے اس پورے اسکول کا, آن لائن آن سائٹ سب سے کٹھن جس کو میں کہتی ہوں, وہ یہ ہے کہ جب کبھی آپ یہ کورس کنٹینیو نہ کر سکیں تو آپ کیا کریں. پھر اسٹیپس دیے میں, اور اس میں یہ کہ آپ آ کے ڈکلریشن فارم فل کرتے ہیں, دیٹس اٹ. यकीन करें अच्छे अच्छे लोग भी उस रूल को नहीं हमारे फॉलो करते, तो मैं तो क्यामत के दिन सब सामने रखूंगी अपने भी कि हमने ये कहा था कि हम सारे रूल्स मानेंगे। मेरी नजर में किसी मर्द का बीवी से अलग होना या शौहर बीवी का तलाक होना, घर टूट जाना, ये छोटी तबाही होती है। कुरान से हटना, इससे बड़ी तबाही आती। मैंने अपने ऊपर लेती हूँ, मैंने ये सोचा कि नहीं ये शौहर नहीं तो क्या हुआ कोई दूसरा शौहर से, सोच भी सकता मुंह प्यार था। तो जब आप कुरान पे चले चलाए सोचते ना, ये नहीं मैं कहीं और चली जाऊंगी, आप 2-3-6 महीने बाद पूछिए वो वहां भी नहीं होते। शैतान ये नहीं कभी कहता छोड़ दो, वो कहता है ये ना करो वो कर लो। जब शैतान ट्रैप दे ना कोई दूसरा, ये हार्ड है वो आसान होगा, ये इजी कहोगे ये वो, बस समझ लीजिए कि इंसलाह। और जब इंसलाह होगा तो मैं इसको ऐसे सोची जैसे जख्म के ऊपर से छिलका उतर गया, तो फिर शैतान उस बंदे पे आ जाता है। और आप सोचिए कि जब इल्म अंदर नहीं उतरता ना, तो माहौल बदलते ही हालात बदलने लगते हैं। इसको लिखें, आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगी इंशाल्लाह। जब इल्म का पानी अंदर नहीं जाता ना, तो हालात बदलते ही हालत बदलने लगती है, ये लबादा उतर जाता है। मसलन कपड़ों में आपने देखे होंगे दो तरह के कपड़े होते हैं, एक होते हैं सेल्फ प्रिंटेड जो वीविंग में कलर प्रिंटेड होते हैं ना, जो हमारे आम कपड़े होते हैं, और एक होते हैं ब्लॉक प्रिंट्स। फर्क क्या है दोनों का, फर्क पता है? ब्लॉक प्रिंट क्या होता है, आप प्लेन कपड़े के ऊपर बाद में ब्लॉकिंग करते हैं या कराते हैं, और एक प्रिंटेड कपड़ा होता है जो उसकी वीविंग में ब्लू नीला पीला सब रंग डलते हैं। फर्क क्या होता है दोनों का, एक धुलाई की मार है ब्लॉक प्रिंट। ना धोए तो जब तक मर्जी पहने से खूबसूरत बहुत लगता है, शाइनी चमकता और ग्लिटरी, लेकिन एक दुबारा धोया तो वो जोड़ा आपका नाइट सूट भी नहीं रहता। लेकिन जो प्रिंटेड है इजी गोइंग, वो आपका नाइट ड्रेस भी होगा तो आपको मजा आएगा। ये है इल्म का फर्क। जो इल्म अंदर आपके उतर रहा है ना इस वक्त, वो आपके कपड़ों की तरह आपके जिस्म का हिस्सा बन रहा है, ये तो नहीं जाएगा कहीं भी इंशाल्लाह। अल्लाह ना करे आपको कोई कितना भी दूर कर दे इस किताब से, नहीं जाएगा। लेकिन अगर ऊपर का ब्लॉक था ना ग्लैमरी, तो जरूर 4 दिन का कोई गैप आएगा। मुझे तो छुट्टियां देते हुए खौफ आने लगता है वल्लाह ही। आपको छुट्टियां देती हूँ, मैं खुद को नहीं देती। मुझे अपने ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं है कि मैं चंद दिन जरा किताब से दूर हूँ और फतबा शैतान मेरे साथ शैतान न लगे और मैं भी उन्हीं ख्वाहिशों में घुस जाऊं जिससे जान छुड़ानी मुश्किल होती है। तो याद रखिए इस पे हर वक्त अपने आप को लेना पड़ता है। फिर आप देख रहे हैं आखिरी कैफियत क्या आई है इसमें, फमसल हो कल्ब, ख्वाहिशें बढ़ती हैं। चलिए ख्वाहिश पे इतनी देर बात करते हैं। ये बताइए कि क्या इन 9 सिपारों में आपकी ख्वाहिशें कम हुई? ख्वाहिश पे कमी आई ना, सबसे ज्यादा कमी इस पे आती है। आप खुद गैर महसूस तरीके से, मजे की बात यह शिफ्टिंग होती रहती है, बिहेवियर और मूड चेंज होते हैं ना, तो मैं खुद सोचती हूँ कहला इज इट नेचुरल। फिर मैं सोचती अच्छा शायद मेरी उम्र आगे जा रही है तो ऐसे बढ़ रहे, फिर मैं नहीं, मेरी उम्र के माशाल्लाह मेरे से कई बड़े हैं और वो अभी भी इसमें जो मैं अपने अंदर फील करती हूँ वो उनमें भी नहीं है। तो मैं सोचती हूँ कि ये किताब अंदर से आपको इस तरह मोड़ती है जैसे वो राउंड अबाउट पे आहिस्ता आहिस्ता आपकी गाड़ी मुड़ती है और आपको पता नहीं चलता और आप एक पूरा यू टर्न लेते हैं। फमसल हो कल, ये देखिए अब ये ख्वाहिश परस्त इंसान का अल्लाह ने जो हाल बयान किया है। कल कुत्ता जुबान लटकाता है, जरा इन तस्वीरों को देखें और फील करें क्या हो रहा है। कुत्ता क्या है? कुत्ता कुत्ता अल्लाह ने बनाया, लेकिन ये दुनिया परस्त की सिंबल है। कुत्ता जो है ना, ये 2 चीजों की अलामत है जानवरों में। लिख लें, आपको इनमें से कोई भी तस्वीर अच्छी लग रही है? और अल्लाह किसको कह रही है? ख्वाहिशों के पीछे राल टपकाने वाले। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। इस दुनिया का कुत्ता जब बंदा बनता है तो इस तरह हो जाता है कि अखलद इलल अर, भटक जाता है, राल टपकती है इसकी, ये हर वक्त अपनी ही फर्ज को चाटता रहता है। कुत्ते की बुरी आते हैं, कुत्ता कुत्ता है तो ठीक है, लेकिन जब इंसान कुत्ता बनता है तो बड़ा बुरा बनता है। अल्लाह ताला ने उसका नाम लिया, और यही मिसाल सूरह जुमा की आयत 5 में है, बिल्कुल इसी मज़मून पे। अल्लज़ीना हुम मिलुत्तौरात थुम्म लम यहमिलूहा, वो लोग जिनको तौरात का बोझ उठवाया गया था लेकिन वो उठा नहीं सके, किताब की पाबंदी नहीं बर्दाश्त कर सके। कमसलिल हिमार यहमिलु असफारा, वो गधे की तरह है बोझ उठाते, वहां बस गधा कहा गया, यहाँ कुत्ता कहा गया। तो आप देखिए कि ख्वाहिश परस्त इंसान की राह कैसे लटकती है, देखिए कुत्ते की जुबान कैसी होती है। आप इसको हर जुबान के नीचे कोई ख्वाहिश लिखें, एक लेके आते हैं तो दो छोड़ के आते हैं और वो लेनी है, और जो नहीं है वही सबसे खूबसूरत है। जो आ गया वो तो बस अब एक दफा पहन लिया ओढ़ लिया वो तो हो गया, और इसी की वजह से जन्नत की खूबसूरत चीजें बंदा छोड़ देता है। क्या अल्लाह ने यहाँ कुत्ते की बेइज्जती की है? नहीं, कुत्ते की बेइज्जती नहीं है, ये इंसान की बेइज्जती है। देखिए कुत्ते को कुत्ता कहेंगे तो ठीक है, इट्स डॉग, लेकिन आज का दौर ख्वाहिश का दौर है। और दुख की बात आपको बता के कि आज के दौर में मॉडर्न दुनिया का स्लोगन कुत्ता है। कैन यू बिलीव, पेट्स के नाम पे कुत्ता पालना, ये तो हम सब मेरा हम अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं। ये सुना था वहां को एक गोरे कुत्ते पालते हैं, राइट, ऐसे ही सुना मैंने। आपको पता कि आज के दौर में कुत्ते को कितनी इज्जत हासिल है? आपने वो देखा होगा, एक औरत करोड़पति जब मरी तो अपनी सारी जायदाद उसने कुत्ते को दी, और वो रेड कुशन पे बैठा गले में डायमंड पहना हुआ कुत्ता, उसकी तस्वीर आपको मिल जाएगी नेट से देख ले। कुत्ते से तो लोग इतना प्यार करते हैं, जो लाखुदा कौमे होती है ना उनका तो सिंबल ही कुत्ता है। अगर आप देखें तो एक हुआ था कोई कन्वेंशन, ये कन्वेंशन ही है, जैसे ओपरास का नाम सुना हुआ मैंने पिछले सालों में जब ये पढ़ाया तो सुनाई थी बात के एक शख्स, तो उसकी तस्वीर थी कि जिसने कुतिया से शादी की है, ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी हुई है कुतिया ने, और उसके गले में हार और उसमें डाल रहा है। तो वजह पूछी किसी ने, तो कहने लगा कि आज से एक साल पहले मेरे पीछे कुत्ता पड़ा तो मैंने उसको पत्थर मारा, तो उसके बाद से मेरे ऊपर मुसीबतें टूट रही हैं, तो इसका तो कि कुत्ता खुदा मेरे से नाराज है, तब उसको खुश करने के लिए मैं ये शादी कर रहा हूँ। ये है अखलत अल्लाह, और यह फत बहुत शैतान फकान अमिन अलगाबीन। ओपरा विनफ्री एक टॉक शो हुआ था, वहां कहते हैं कि उसका जो टॉपिक था वो क्या था कि अपना अपना कुत्ता साथ लेके आओ। जो लोग थे वो अपने कुत्ते लाए, जिसकी शक्ल उसके कुत्ते से ज्यादा मिलती थी ना वो जीता। ये ओपराज हुआ थे नॉर्वे में, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है ओपरा की, बड़ी अजीबो गरीब सी बनी हुई है। इस तरह के शोज वहां मतलब बड़ी अजीबो गरीब चीजें होती है। इसी तरह कहते हैं कि एक इवेंट इनका हुआ था कि जैपनीज प्राइम मिनिस्टर उसकी तस्वीर इन्होंने लोगों को दिखाई और दी, और कहा कि इसकी शक्ल से मिलता जुलता कुत्ता लाओ, जिसका कुत्ता ज्यादा इसकी शक्ल से मिलेगा उसको प्राइज मिलेगा। हम कुत्ते को बुरा कहते हैं, वो तो बड़ी इज्जत देते हैं। तो आप देखिए कि कुत्ते की क्या बात है, थोड़ा सा इसके ऊपर भी गौर कर लेते हैं। कुत्ते की क्या बातें हैं कि अल्लाह ने उसको सामने रखा है? पहली बात याद रखिये कि कुत्ता कुत्ता हो तो अच्छा है, अल्लाह ने उसमें लॉयलिटी रखी है, अपने मालिक का बड़ा वफादार होता है, उसके लिए शिकार करता है। लेकिन इंसान जब कुत्ता बनता है ना तो वो कुत्ता भी नहीं रहता, वही बात बन जाती है। तो कुत्ता जो होता है ना, पहली बात है कि इसकी राल हर वक्त टपकती रहती है, इसको लकड़ी भी फेंको ना इसकी तरफ तो जो उसको हड्डी समझ के चूसता है एक दफा। फिर इसी तरह कुत्ता जब अपने मुंह में हड्डी रखकर पानी में अपना अक्स देखता है तो समझता है कि पानी में एक और कुत्ता है और उसके मुंह में हड्डी है, तो कहता है कि मैंने उसकी भी हड्डी लेनी है, और इस सूरत में मुंह खोलता है और वो उसके मुंह की हड्डी जो है वो पानी में गिर जाती है। एक्सट्रीम ग्रीड, सबसे ज्यादा यानी मुझे मिल जाए, मेरे पास सबसे ज्यादा हो। फिर इसी तरह आप देखें कि कुत्ता जब बैठता है ना तो अपनी प्राइवेट पार्ट को लिक करता रहता है, इसका दो ही काम है, थालिया और सेक्स, इसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं होता। फिर इसी तरह आप देखिए कि जो कुत्ते हैं ना, इनके अंदर अगर आप जर्म्स के नाते से देखें तो हदीस में आता है कि बिल्ली तुम्हारे इर्द गिर्द रहने वालों में से है। अगर बिल्ली किसी के बर्तन में पी जाए तो कोई बात नहीं, धो के पी लो, लेकिन कुत्ता अगर किसी के बर्तन को छू जाए तो 7 दफा धोना होता है, इसमें जर्म्स है। फेंकना तो नहीं, उस दौर में तो इतने थोड़े होते थे बर्तन, लेकिन यह है कि उसको मट्टी से फिर पाक करते हैं, तो इसका अंदर कि उसके अंदर कुछ ना कुछ जरासीम मौजूद है ना। अल्लाह सुबहाना ताला ये सब देकर क्या सिखाना चाहते हैं कि तुम इंसान बनो, तुम्हारे अंदर कनात हो, शुक्रगुजारी हो, तुम अपने आप को अल्लाह की देन पर राजी रखो। तुम इस तरह से ना बनो कि तुम अपने आप को हर वक्त इसी तरह ईट ड्रिंक और बी मैरी में रखो। फिर इसी तरह आप देखिए कि इससे ये बात भी समझ आ जाती है कि इंसान को इस दुनिया के लिए नहीं सिर्फ जीना, आखिरत के लिए जीना, हर वक्त यही फिक्र, यहाँ की आजाइश लज्जत, घर छोटा है तो बड़ा हो जाए, शादी हो जाए, कपड़े बन जाए, बच्चों का हो जाए, वो हो जाए, ये कर जाए, बड़ी बात सोचो। कहते हैं कि कुत्ते की बड़ी नहीं होती सोच, कभी सैर नहीं होता, हिर्स होती है इसके अंदर, चलते फिरते जमीन सूंघता रहता है। कहीं से खुशबू आए खाने की, ये वहां पहुंच जाता है। इसको पत्थर भी मारे तो ये सोचता है कि मुझे खाने की चीज मारी गई है, और जाके एक दफा जरूर उसको देखता है, दांतों में पकड़ लेता है। कहते हैं कि अगर कहीं कोई बड़ी लाश पड़ी हो ना, तो आम जानवर क्या करते हैं कि कुछ आवाजें निकालते हैं और दूसरे अपने जानवरों को बुला लेते हैं, क्या हो, इस लाश को मिलके खाते हैं, होता है ना जानवरों में। कुत्ते की आदत क्या है कि अगर बहुत बड़ी लाश किसी जानवर की पड़ी है और उसको पता है कि कई कुत्ते खा सकते हैं इसको, लेकिन वो दूसरे कुत्तों से उसको छुपाता है कि मैं खुद खा लूं इसको, पास नहीं पटकने देता। तो जब बात का खुलासा है कि इल्म और ईमान की रस्सी छूटती है, तो नफ्स की अंधी ख्वाहिशात के पीछे इंसान एक कुत्ते की तरह बन जाता है, फिर उसकी जिंदगी जानवरों से भी भर जाती है, और वो हाल क्या हो जाता है, जिंदगी का मकसद भूल जाता है। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। इसलिए अल्लाह सुबहान तआला हम सबको यहाँ अपनी सोचों को सीधा करना चाहते हैं। इसीलिए अब देखिए कि ऐसे लोग, अब ये वो किरदार हैं जिनका हाल ये हो जाए। ये मैं जुमला इसलिए बोल रही हूँ कि अगली आयत से पहले इसको लिख लें तो फायदा होगा।